جو سے بولا ہے چکما
یہ بات آپ تیلگو میں سمجھ لو
آج مرلی نے بتایا چکما چک بتایا کیا ہے
چکما چک تو نہیں بولا چکما چک کوئی نہیں ہوتا
اشٹ دیو ہیں تو ان کی اشٹ دیویاں بھی ہیں اور آٹھ نارائن ہیں ستیوگ کے تو ان کی آٹھ لکشمی بھی ہیں ستیوگ میں نارائن کتنے ہوں گے آٹھ نارائن ہوں گے تو لکشمی بھی کتنی ہوں گی آٹھ لکشمی ہوں گی اور ہاں ہاں وہ تو چاہے گناتے چلے جاؤ اور ہاں جی
مہابھارت میں لکھا ہے کہ خود اندر میں مہابھارت میں لکھا ہے کہ خود اندر میں کرن کے پاس جا کر کے کمفرٹبل مانا نا
اس کے پاس جائیں گے
کرن کے پاس
مہابھارت دیویندر نے جا کر کے دان مانگا
دان مانگا خاص ارجن کے لیے مانگا نا خاص ارجن کے لیے مانگا وہ
اس کا بچہ تھا نا
اندر کا بھی اگر ایسا ممت ہوتا ہے تو یہ تو ہے
یہ کہانیاں کہاں کی ہیں جب اندر دیوتا سمپورن بنا دیوتا بن گیا اس سمے کی کہانی ہے یہ جب ادھورا تھا تب کی کہانی ہے کہانی کہاں کی ہے ادھورا ہے تو مانگتا بھی ہے جب سمپورن ہے تو تھوڑا ہی مانگے گا اندر دیوتا کہاں گیا ہے انہیں تو پتا ہی نہیں ہے سنگم یوگ کا اور سورگ کا لکھنے والوں کو ابھی ہم کو تو پتا چل گیا اندر دیوتا بھی یہی ہے اور کرن بھی یہی ہے جب تک یہی نہیں سمجھا کہ کرن کون ہے تو اندر دیوتا کا بھی بھرم پیدا ہوتا رہے گا کرن کو مہادانی دکھایا گیا ہے دیوتاؤں کو مہادانی نہیں دکھایا گیا کرن نام کیوں پڑا کرن مانے کیا ہوتا ہے ارے کرن مانے کیا کان یہ نام کیوں پڑا ارے نام کس لیے پڑتا ہے کام کے آدھار پر دیوتاؤں میں کوئی ایسا دیوتا ہے جس کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہے گنیش کان بڑے بڑے ہوتے ہیں نا اس کا کیا مطلب ہوا مطلب ہوا کہ سننا اور سنانا جاستی ہوتا ہے اس لیے کان بڑے بڑے دکھائے گئے ہیں تو کرن والی آتما بھی ज्ञान को सुनने वालों में सबसे जास्ती आगे और सुनाने वालों में भी सबसे जास्ती आगे। ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ये किसका पार्ट है? जिसके कान सबसे पहले सुनते हैं, जो सबसे ज्यादा सुनाता है और सबसे ज्यादा सुनता भी है। और पक्ष कौरवों को लेता है या पांडवों का पक्ष लेता है? कौरवों का पक्ष लेता है। सब कुछ जानते हुए भी, सारा ज्ञान सुनते हुए भी, सुनाते हुए भी पक्ष फिर भी किसका लेता है? कौरवों का पक्ष लेता है। ये भी जान जाता है कि कौरव और पांडव दोनों के बीच में धर्म अधर्म का युद्ध है। अपने को कुंती पुत्र भी समझ लेता है। अंदर से जानता है कि पांडवों में मैं बड़ा भ्राता पांडव हूं। फिर भी कर्मों में परिवर्तन नहीं हो पाता। ऐसा संघ का रंग लग जाता है। ऐसा बड़ा महारथी, ऐसा बड़ा महादानी पांडवों में कोई दिखाया नहीं गया। कर्ण की, क्राइस्ट की, कृष्ण की राशि मिलती है कि नहीं मिलती है? राशि भी एक ही है। नाम मान शान चाहने वाले कौरवों के पक्ष में जाते हैं या पांडवों के पक्ष में जाते हैं? कौरवों के पक्ष में जाते हैं। पांडव तो अपने पुरुषार्थ को भी गुप्त रखते हैं। नाम मान शान पद मतवा सब उनका गुप्त होता है। क्रिश्चियंस को तो दिखाया ही जाता है दिखावा करने वाला। और क्रिश्चियंस और क्राइस्ट फॉलो किसको करते हैं? है? किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। ब्रह्मा का प्रैक्टिकल जीवन जो लौकिक में और अलौकिक में था, वो दिखावा करने वाला जीवन था या यथार्थ को गुप्त रखने वाला था?
शो करने वाली,
गुप्त रखने वाला था?
शो करने वाली।
दुकान में भी जब धंधा दौड़ी करते थे तो सोने चांदी के हीरों के माल बनाते थे, था कम कीमत का, परंतु कैसी डब्बी में दिखाते थे? बढ़िया फर्स्ट क्लास डब्बी में शो करके दिखाते थे। आज की दुनिया में लौकिक धंधे धोरी में लखपति करोड़पति कौन बनता है? दिखावा करने वाला बनता है या एक दाम बोलने वाला बनता है? दिखावा करने वाला, एक भागीदार भी था। हीरों की छोटी सी दुकान थी दुनिया के झूठे बाजार में, उसकी दुकान क्यों नहीं चली? क्यों गरीब बन करके रहा? क्या कारण था? सच्चाई थी। कलयुग की दुनिया में सच्चाई का बोलबाला नहीं हो पाता।
और बाबा ने कहा कि पहले नारायण तो देवता बनता है, फिर कहते हो तो लक्ष्मी का नाम पहले क्यों आता है?
लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण के जन्म की प्योरिटी है, बनी बनाई बन रही और आप कछु बन नहीं ना है। 63 जन्म की जो प्योरिटी है वो 63 जन्म की प्योरिटी सन्यासियों वाली है या गृहस्थी जीवन वाली है? सन्यासियों की जो प्योरिटी है ना वो सन्यासियों वाली प्योरिटी है। जब तक ज्ञान न मिले, और जब ज्ञान मिल जाता है तो बात समझ में आती है। परंतु ये नियम बना हुआ है जिसमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के संस्कार होंगे, वो आत्माएं जब एडवांस में सहयोगी बन जावेंगी, जैसे सन्यासी, तो बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो जिनसे प्राप्ति करनी होती है उनको मान देना चाहिए, आगे रखना चाहिए। तो कोई खराब बात है क्या माताओं को आगे रख देने में? अच्छी बात है ना? लेकिन राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में। ये राधा और कृष्ण सुधरे हुए मनुष्य हैं या भगवान भगवती है? है सुधरे हुए मनुष्य है। राम सीता नहीं कहते, सीता राम कहते हैं। सीता का नाम पहले, ये सीता राम सुधरे हुए मनुष्य है या भगवान भगवती है? दुनिया भले भगवान भगवती मानती हो लेकिन वास्तविकता क्या है? ये भगवान भगवती नहीं है। जहां भगवान भगवती का सवाल आता है वहां पार्वती का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में नहीं आता। क्या कहते हैं? शंकर पार्वती कहा जाता है। भगवान को सदैव आगे रखना होता है, भगवती को सदैव बाद में रखना होता है। गुणी चाहे जितनी भी हो, भगवान पवित्रों के लिए आता है या अपवित्रों के लिए आता है?
पवित्रों के लिए आते, पवित्र बनने
अगर है। पवित्र आत्माओं के लिए ही भगवान आता हो तो जो साधु सन्यासी हैं उनको ऊंच पद मिलना चाहिए, उनको रुद्रमाला में आना चाहिए जो शिव की माला है। रुद्रमाला बड़ी या विजयमाला बड़ी? विजयमाला के मन का वन्ना खुश नसीबी नहीं है, वो राजयोग नहीं सीखते। अभी भी विजयमाला के मन के राजयोग नहीं सीख रहे हैं, कौन सीखते हैं? रुद्रमाला के रुद्र के डायरेक्ट बच्चे हैं, वो ही राजयोग सीखने वाले हैं। पवित्रता बड़ी चीज है लेकिन प्योरिटी से भी बड़ी चीज याद है या प्योरिटी ही बड़ी चीज है? याद सर्वोपरि चीज है। ज्ञान योग पवित्रता की धारणा और सेवा, इनमें अव्वल नंबर वन सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान। धारणा में पास, सेवा में पास, सब सब्जेक्टों में पास और योग में फेल, तो क्या कहा जाएगा? फेल ही कहा जाएगा। और सब सब्जेक्ट में फेल हो जाए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं याद में पास हो जाएंगी, बंधन में रहने वाली माताएं याद में पास हो जाएंगी, और सेवा में भी फेल, धारणा में भी फेल, और ज्ञान में भी फेल। लेकिन याद में पास हो जाएंगी तो क्या कही जाएंगी, पास या फेल? पास कही जाएंगी। याद में जो पास हो जाएंगे, अंत में उनके अंदर ज्ञान स्वतः ही समा जाएगा। ये परिवर्तन की वंडरफुल बात देखने में आवेगी। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी दुनिया वालों को जो ज्ञान सुनाएंगी, वो अच्छे अच्छे ज्ञान ही नहीं सुना पाएंगे। एडवांस ज्ञान में चलने वाले भी शरीर छोड़ रहे हैं, उनके 84 जन्म पूरे हुए या नहीं हुए? क्या कहें है? अभी वो विकार से जन्म नहीं लेंगे? एडवांस में ज्ञान में चलने वाले जो शरीर छोड़ रहे हैं, उनका विकारी जन्म होगा या नहीं होगा? 84वें जन्म का बाप मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? नहीं मिलेगा? मिलेगा। और जब 84वें जन्म का बाप मिलेगा, एक जन्म कम रह गया, तो भक्ति पूरी हुई या नहीं हुई? क्या करें? आखिरी जन्म की भक्ति पूरी हुई या अधूरी हुई? क्या कहे? पूरी हो गई। 83 जन्म में ही अधूरी रह गई भक्ति, अधूरी भक्ति रह गई है, इसीलिए तो शरीर छोड़ना पड़ा। नहीं तो शरीर क्यों छोड़ना पड़े?
बाबा, इस तार्त में बेहद में क्या आते हैं?
राम की नवमी मनाई जाती है और कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग में 8 नारायण होते हैं। 8 नारायणों का सतयुग में जन्म होने के बाद 8वें नारायण का जो वर्षा लेता है, वो 9वें नंबर का राम नवमी की यादगार मनाई जाती है। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में। संगम युग में राम वाली आत्मा जब एडवांस में आती है, उस समय 8 नारायण ज्ञान में पहले से ही तैयार होते हैं। उनमें थे 7 कृष्ण जैसे बच्चे कंस के कुसावे में आ जाते हैं, कंस उनको कोस लेता है, विकारों की दुनिया में ढकेल देता है, कंस और कृष्ण बच जाता है। कृष्ण वाली आत्मा जो है वो राम की बुद्धि रूपी टोकरी में सुरक्षित तो हो जाती है। इसलिए आठ नारायणों का जन्म होने के बाद, आठ नारायणों की प्रत्यक्षता होने के बाद, जिनका कनेक्शन अर्थ देवों से है, नौवा नंबर राम की प्रत्यक्षता होती है, तो राम नवमी मनाते हैं।
आश्वासन में आश्वासन से याद और श्रावा मतलब क्या है?
जो भी श्वास आए, जो भी श्वास जाए, उसमें देखना है हमने सेवा क्या की, याद रही कि नहीं रही, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। श्वास ली, श्वास छोड़ी, हर श्वास लेने में और छोड़ने में सेकंड सेकंड बाप की याद रह सकती है या नहीं रह सकती है? रह सकती है। तो जहां याद होगी वहां सेवा होगी या नहीं होगी?
जरूर होगी,
सेवा तो जरूर होगी। तो हर श्वास में याद भी समाई हुई हो, सेवा भी समाई हुई हो, इस सर्विस न समाई हुई हो, कोई वाचा ऐसी न निकले जो देहभान में निकल जाए और डिसर्विस हो जाए, अपनी आत्मा की डिसर्विस हो जाए चाहे दूसरी आत्माओं की डिसर्विस हो जाए। से नहीं कहेंगे श्वासो श्वास याद।
आदि में बाबा ने युगल में आकर के सुनने सुनाने और समझने और समझाने का पार्ट बजाया, तो आदि तो अंत होना चाहिए ना, तो अंत में ये पार्ट कैसे होता है? अंत में वो युगल कम है,
आदि कम और अंत कम,
इस संगम का ही है ना।
संगम है 100 साल का संगम है और उसमें एक संगम है सामान्य और एक संगम है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां से नंबरवार पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। पहले तो ये समझना पड़े कि आदि संगम कौन सा और अंत संगम कौन सा है। अंत माने संपन्न और आदि माने संपन्न तो था क्योंकि तीनों मूर्तियां उस समय मौजूद हैं, आदि में भी तीन मूर्तियां में एक मूर्ति है छोटी मां, एक मूर्ति है बड़ी मां और एक मूर्ति है बाप। मूर्ति माना ही साकार, आपके प्रश्न का मूल क्या है?
सुनना सुनाना और समझना समझाना के बाद होता है क्या? बोलते
सुनना सुनाना पहले होता है, समझना समझाना मध्य में होता है,
जो आदि स्वामी
और सुनने के साथ समझना समझाना समझने समझाने में तो अंतर होगा, लेकिन सुनने के साथ समझना भी कभी कभी हो जाता है। अगर बुद्धिमान है एक कान से सुनता जाएगा और साथ साथ समझता भी जाएगा, वो आज में हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल करना नहीं हो पाता। सुनना और समझना साथ साथ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में टाइम लगेगा, वो अंत की बात है। यहाँ सुनना भी हो जाता है, सुनने सुनाने वाली शख्सियत भी मौजूद है, जिसे कहते हैं बड़ी माँ। क्या सुनती है और सुनाती भी है, सुनने में और सुनाने में उससे जास्ती तीखा कोई होता ही नहीं। इसके कहा जगदम्बा, जगदम्बा सो लंबी जीभ वाली क्या बनती है, महाकाली बनती है, उससे बड़ी बाचा की देवी और कोई होती ही नहीं। बाचा चलाने में उससे कोई नंबर आगे नहीं ले सकता, परंतु धारणा में पीछे रह जाती। तो धारणा में आगे जाने वाली भी कोई देवी है, जिसको कहते हैं अभ्यक्तवाणी में, जिसके लिए बोला है पहली अभ्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारायण। तो अंत में तीनों ही बातें संपन्न हो जाती है, सुनने सुनाने वाली भी मिलती है, समझने समझाने वाला भी मिल जाता है, और प्रैक्टिकल जीवन में सबसे पहले धारणा करने वाली भी वहां मौजूद होती है। ये तीनों मूर्तियां आदि में भी मौजूद थी, सेवा अकेला नहीं आता है,
बच्चों के साथ साथ
तीनों मूर्तियों के साथ आता है, और अंत में भी जब प्रत्यक्षता होगी तो सुनने सुनाने वाली मूर्ति भी होगी, समझने समझाने वाली जो निमित्त मूर्ति है वो भी होगी, और प्रैक्टिकल करने कराने वाली मूर्ति भी मौजूद होगी। उसे कहेंगे अंत। नहीं तो कलयुग में और सतयुग के आदि में कोई अंतर ही न रहे। प्रश्न आया है, एडवांस में जो अचानक शरीर छोड़ते हैं उनको तुरंत शरीर मिलेगा या भटकना पड़ेगा? अचानक शरीर छोड़ने वालों में भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जैसे युद्ध भूमि में युद्ध करते करते, सत्य असत्य के लिए युद्ध करते हैं ना, तो युद्ध करते करते जो शरीर छोड़ते हैं, उन्होंने अपने लिए शरीर छोड़ा या अपने देश के लिए शरीर छोड़ा? पर कल्याण के लिए शरीर छोड़ा या स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ा? तो उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन बंधे ना, बंधना चाहिए या नहीं बंधना चाहिए? नहीं बंधता है। ऐसे यहाँ ज्ञान में जो स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं, हठ में आ जाते हैं, अगर हमको ये चीज नहीं मिलेगी हम प्राण छोड़ देंगे, हमको ये व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हम प्राण छोड़ देंगे, तो ऐसे हठ पूर्वक जो शरीर छोड़ते हैं स्वार्थ के लिए, उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। और जो परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं अचानक, उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है। और जो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधते हैं, उनको पुरुषार्थ करने का वो समय जिसमें उन्होंने सूक्ष्म शरीर से कार्य किया है उसमें ना पाप बनता है और ना पुण्य बनता है। वो सात करने का समय नहीं बनता, लेकिन आत्मा जो है वो अनुभवी तो बनती है। क्या वो अनुभव के संस्कार ले जा करके दोबारा जन्म लेती है, और जन्म लेकर के लास्ट सो फास्ट को साथ करती है। इसलिए एडवांस में आने वाले अगर यदा कदा सूक्ष्म शरीर धारण भी करते हैं तो उनको उतना घाटा नहीं है जितना बेसिक में चलने वाले शरीर छोड़ते हैं अचानक, उनको घाटा होता है। उनका तो एक या आधा जन्म ही कम हो जाएगा, और इनको तो पूरे 84 जन्म मिलते हैं।
हिसाब किताब के अनुसार ही होता है ना बाबा,
पूर्व जन्मों में कोई ना कोई हिसाब किताब बांधा है,
लेकिन तो उस अनुसार ही आना ही पड़ेगा।
है
सूक्ष्म शरीर तो लिया है हिसाब किताब के अनुसार ही, तो फिर जो कर्म होता है उसका उस अनुसार
सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होकर कर्म होता है
उसका लेप क्षेत्र तो उस आत्मा को
अपना शरीर ही नहीं है, उसको लेप क्षेत्र नहीं लगेगा। लेप छेप उत्सव लगता है जिसका अपना शरीर है।
अच्छा जी, तब तो
सूक्ष्म शरीर मिलता ही इसीलिए है कि सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली जो आत्मा है उसके पाप कर्मों का बोझा ज्यादा न चढ़ने पाए। जितने भी सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली विधर्मी आत्मा है वो सब 84 जन्म लेने वाली है या कम जन्म लेने वाली? कम जन्म लेने वाली। सूक्ष्म शरीर के बंधन में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मा जैसी आत्मा को भी घाटा पड़ गया। क्या घाटा पड़ गया? जो प्राप्ति हुई, भले सत्युग के महाराजा बन गए लेकिन संगम युग में जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान से ज्ञान लेना चाहिए, वो ज्ञान डायरेक्ट में नहीं ले सके। और माना सूक्ष्म शरीर जो धारण करने वाली आत्माएं हैं वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं धारण कर पाती, कमी रह जाती है। राजा हरिश्चंद्र को क्या बनना पड़ा? चंडाल बनना पड़ा। तो ये किस आत्मा का पार्ट है? है
रुद्रमाला
का। रुद्रमाला में तो ढेर आत्माएं हैं।
सबसे बड़ा
ये पार्ट किसका है? शास्त्रों में तो सतयुग के आदि में राजा हरिश्चंद्र का राज्य दिखा है। है
महाराज आज में विश्व महाराज का अंत में चंडाल बन गए।
जो चंडाल का पार्ट है वो किसका है? पहले पहले चंडाल कौन बनता है?
पहले पहले महाराज
है।
पहले पहले महाराज बनने
जो पहला पहला ब्राह्मण, जो पहला पहला देवता, जो पहला पहला देवता, जो पहला पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, और शूद्रों में भी آخری ان میں سارے مردوں کو مارنے والا کون؟ آخری ان میں ساری دنیا مردہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
ضرور ہوگی.
ایسا کون سا ٹائم ہوتا ہے جب ساری دنیا مردہ ہوتی ہے؟ سب قبر داخل ہوتے ہیں. قبر داخل کا گینگ کون سے دھرم میں ہے؟ مسلم دھرم میں قبر داخل کا گائن ہے. ان کے یہاں 14th century جب پوری ہوتی ہے اس کے بعد کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. براہمنوں کی سنگمی دنیا میں ساری دنیا قبر داخل کب ہوتی ہے؟ سب مٹی میں, دیوہن کی مٹی میں دب کے مر جاتے ہیں, کوئی زندہ نہیں رہتا. تب اللہ تعالی آ کر کے قبر میں سے ایک ایک کو جگاتے ہیں. وہ کون سا ٹائم ہے؟ ارے اگیان کی نیند میں سے کب سے جگنا شروع ہوتا ہے؟ 76 سے. اس سمے دنیا والوں کی تو بات ہی چھوڑ دو, جو گیان میں چلنے والے برہمن ہیں وہ بھی سب کیا ہو جاتے ہیں؟ مردہ ہو جاتے ہیں. سب دیوان کی مٹی میں دبے ہوئے ہوتے ہیں. تو پہلے پہلے کوئی مردے میں تو جان پھونکی ہوگی. کون سے مردے میں سے جان پھونکی جاتی ہے؟ رب علی آدم. مجھے پوچھا ہے ستیہ ہریش چند چاندال بنتا ہے, اور بابا نے جواب ایک ہی واقعے میں دے دیا, دنیا کی ایسی کوئی بات نہیں جو تیرے اوپر لاگو نہ ہوتی ہو. ارے دنیا میں ڈھیروں ایسے ہیں جن کا چاندال کا پارٹ ہوتا ہے, جنم جنمانتر کے چاندال بنتے ہیں, صرف ایک ہی جنم میں چاندال بنتے ہیں. اچھا مردوں کو جلانے والے ہر جنم میں نہیں ہوتے؟ جنم جنمانتر چانڈال ہوتے ہیں. ان سب چانڈالوں کا پہلا باپ کوئی تو ہوتا ہوگا, ان کا بھی کوئی بیج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا کے بڑے بڑے راجاؤں کا کوئی بیج ہے؟ دنیا کے جتنے بھی برہمن ہیں ان کا بھی کوئی بیج ہے؟ دنیا کے جتنے بڑے بڑے دیوتائیں ہیں ان 33 کروڑ دیوتاؤں کا بھی کوئی ایک بیج ہے؟ تو چانڈالوں کا بھی کوئی بیج ہوگا, باپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ساری دنیا کا باپ ہے, تو چانڈالوں کا باپ نہیں بننا چاہیے؟ خراب بات ہو جائے گی کیا؟ اسے برہما کماریاں کہتی ہیں کہ رام سیتا فیل ہو گئے. کیا رام سیتا فیل ہو گئے؟ تو ان کو داس داسی بننا پڑے گا. یہ داس داسی بننا اچھی بات ہوئی یا خراب بات ہو گئی؟ کیوں داس داسی بننا تو بہت خراب بات ہے. ارے دنیا کی ساری آتمائیں اپنے بچوں کی داس داسی بنتی ہیں. تو رام سیتا بھی اگر ستیوگ کے آج میں جو پرنسپلس سے پیدا ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کے روپ میں داس داسی فرسٹ کلاس بنتے ہیں تو خراب بات ہو گئی کیا؟ بہت اچھی بات ہو گئی. ड्रामा है। ड्रामा में कोई गधे का पार्ट बजाता है, गाय बैल भैंस की झूठी बची हुई घास खा लेता है, खाता है गधे का पार्ट बजाने वाला। कोई महाराजा का पार्ट बजाता है, बजाता है ना। अगर महाराजा का पार्ट बजाने वाला बढ़िया पार्ट न बजावे और लोग तालियां बजा देवे, और गधे का पार्ट बजाने वाला हूबहू आवाज वैसी ही करे और हूबहू गधे की तरह एक्ट करे, लोग वाहवाही कहें, तो अच्छा पार्ट हुआ है खराब पार्ट हुआ है? गधे का पार्ट बजाने वाले को इनाम मिलेगा या महाराजा का पार्ट बजाने वाले को इनाम मिलेगा? है? गधे का पार्ट बजाने वाले को इनाम मिल जाएगा। ऐसे ही ये दुनिया एक रंगमंच है, रंगमंच पर जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वो अपना पार्ट बढ़िया करके बजावे। चंडाल का पार्ट हो तो भी, दास दासी का पार्ट हो तो भी, और महाराजा महारानी का पार्ट हो तो भी, अव्वल नंबर वन पार्ट बजा के दिखा दो तो कहेंगे हीरो पार्टधारी। और हीरो पार्टधारी हो और खुदा न खास्ता उसको कोई नीचा पार्ट बजाना पड़े, पार्ट बजाने वाले एन मौके पे बीमार पड़ जाते हैं ना, पड़ते हैं कि नहीं? पड़ते हैं। तो गधे का पार्ट बजाने वाला बीमार पड़ गया और हीरो पार्टधारी मौजूद है, फ्री है, उसको वो पार्ट दे दिया जाए और वो कहे हम नहीं बजा पाएंगे, तो हीरो पार्टधारी कहा जाएगा है? नहीं कहा जाएगा। चलो
अरे बाबा उनका रचेचा आया, लेकिन बच्चों को नरक का अनुभव है, क्या मुख्य प्रश्न का
सुनिए। तो बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर आया हुआ है तो हम नरक में क्यों बैठे हैं? कारण कुछ होगा या नहीं होगा?
हैं?
ज्ञान की कमी है, माने बाप को पहचाना नहीं है, हैं? हैं? और कोई ने नहीं पहचाना बाप को, अगर कोई ने पहचाना ही नहीं तो फिर स्वर्ग आएगा ही नहीं। बाप तो कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, नंबर वार खुशी में रहने वाले बच्चे हैं, संगम युग मौजों का युग है या नरक के दुखों में रहने का युग है? तो मौज में कोई है ही नहीं। माना बाप जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर पूरा पूरा चलते नहीं है, कुछ न कुछ अवज्ञाएं करते जरूर हैं, इसलिए सुख का अनुभव नहीं कर पाते। सोचने की बात है, करोड़पति बाप का बच्चा हो फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो तो लोग क्या समझेंगे? है? है? बाप के कंट्रोल से बाहर है। यही हालत है, बाप आया हुआ है, स्वर्ग का रचयिता है, बच्चे नरक में हैं, दुखों का अनुभव कर रहे हैं। कारण क्या है?
हैं?
अभी बाप के बच्चे ब्राह्मण बने ही नहीं हैं। इसलिए बोला अंत में सबको अनुभव होगा क्या अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोला खाते रहते हैं। जैसे बोला कि ज्ञान नहीं है, पूरी बाप की पहचान नहीं है कि बाप है क्या, तो अब अज्ञान ही करते रहते हैं।
आत्मा शरीर छोड़ने का बाद कुछ देख सकती है और कुछ सोच सकती है।
शरीर छोड़ने के बाद कोई शरीर में प्रवेश करके देख भी सकती है, सोच भी सकती है।
सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुछ देख सकती है या कुछ सोच सकती है क्या?
सूक्ष्म शरीर भी तो प्रवेश करता है।
बिना प्रवेश करते
हैं?
बिना प्रवेश करते,
बिना प्रवेश करिए तो बस सिर्फ अपने घोड़े को पहचान लेती है। जैसे शिव बाबा आता है तो दुनिया को कैसे देखता है, है? प्रवेश करता है तो देखता है।
बाबा लेकिन और आत्मा जब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर तो है ना बाबा, सूक्ष्म शरीर रहते हैं ना,
सूक्ष्म शरीर होता है
और कभी
है
सूक्ष्म शरीर से दूसरों की बातें नहीं सुन सकते
हैं बाबा। सूक्ष्म शरीर से दूसरों की बातें नहीं सुन सकते, फिर प्रवेश करने की क्या दरकार?
बातें भी नहीं कर सकते।
अरे
सूक्ष्म शरीर होते हैं ना?
हाँ सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन कोई कोई को अनुभव होता है कि ये बोल रहा है, आवाज सुनाई पड़ती है, वो भय का भूत होता है। अगर सुनाई पड़े तो सबको सुनाई पड़े, कोई को सुनाई पड़ती है, कोई को नहीं सुनाई पड़ती है।
बाबा ये त्रेसठ नायन के बारे में आप
है
कुछ इन्फॉर्मेशन?
त्रेसठ
नायन
कहना क्या है?
नाइन मार्क
उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन।
64 योगिनी प्रसिद्ध है। 63
सब तो सुना नहीं। 64 जोगनिया प्रसिद्ध है।
कबलर में एक सीढ़ी में है, आप थोड़ा क्राइटेरिया।
कन्नड़ सीढ़ी में आ गया होगा, जाने कहाँ से कन्नड़ में उठा लिया है। कलाई मंगल
चेन्नई का
64 जोगनिया गाई हुई है।
उसमें वो तीन को अलग करके बहुत मान्यता देते
हैं,
वो तीन को उसमें तीन को बहुत मान्यता देते
हैं, तीन को बहुत मान्यता देते हैं। तो तीन तो जोगनिया है ही खास, रुद्रमाला जो पहचानने वाले हैं वही जोगी विशेष होते हैं या और दूसरे होते हैं, हैं? और रुद्रमाला में तीन देवियां ही तो मुख्य हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और जगदम्बा।
मंदिरों में मूर्तियों को पंचामृत कैसे अभिषेक करता है, उनका पंचामृत तो आत्माओं का निधान होता है या
पांच अमृत है। अमृत किसे कहा जाता है, है? अमृत तो ज्ञान ही है जो आत्मा मुर्दे से सालिम बन जाती है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। तो पांच अमृत हैं, एक तो गऊ का घृत, घृत कहा जाता है याद को, जितनी याद करेंगे बुद्धि शुद्ध बनती जाएगी। दूसरा दूध को, ज्ञान दुग्ध है, गाय का दूध श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा भी कहते हैं कन्या माताओं के मुख से ज्ञान अच्छा होता है सुनना, वो चाहे गंगा हो और चाहे वैष्णवी देवी हो। फिर मिष्ठान्न को कहते हैं मीठा, बाबा भी कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो खूब मीठे बनो, नाम मात्र को भी कड़ुआपन कड़ुआपन न रहे। अगर भरपूर मीठे बन गए तो जैसे नारायण बहुत मीठे हैं वैसे ही नारायण को सब प्यार करते हैं, नारायण के सबसे संस्कार मिल जाते हैं। और कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ पूरे संस्कार सबके मिल जाते हो, नारायण को सब पसंद करते हैं। तो किस लिए करते हैं,
मीठा मीठा
बहुत मीठा है। ब्रह्मा बाबा को सब पसंद क्यों करते थे सामने आके, बहुत मीठा था। तो मिठास भी चाहिए, दूध भी चाहिए, घृत भी चाहिए और शहद भी डालते हैं। क्या शहद कहाँ से आता है, जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें प्योरिटी की पावर बहुत होती है। कितनी प्योरिटी की पावर होती है कि संगठित होकर के छोटे से घर में कितनी ढेर की ढेर इकट्ठी हो जाती है, यूनिटी की पावर है। उस यूनिटी की पावर से जो चीज तैयार करती है वो शहद है, साधारण मिठास से भी बहुत ऊंची किस्म की चीज है। तो ये पांच चीजें हैं जो डाली जाती है, इकट्ठी कर देते हैं तो कहते हैं पंच गव्य, जैसे होता है वैसे ही पंचामृत कहा जाता है।
बाबा अभी तक पिछले एक जन्म को भी याद नहीं आ रहा है,
आपको याद नहीं आ रहा है या रामकृष्ण की आत्माओं को भी नहीं याद आ रहा है? क्यों है? रामकृष्ण की आत्माओं को, जगदम्बा को, लक्ष्मी को, उनको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा होगा? है उनको याद आ रहा होगा, तो उनका नंबर लगे पहले 84 का चक्र समझने का, फिर हमारा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? हमारा भी लगेगा या हम आगे? तो जब हम आगे नहीं है, पुरुषार्थ में हम पीछे हैं, तो नंबर भी हमारा पीछे लगेगा।
कौन सा आधार पर ये 84 का जन्म याद आएगा? हिस्ट्री के आधार पर आएगा,
ज्ञान के आधार पर ही याद आएगा। ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जाएंगे जिन पर मंथन करने से अपने पार्ट खुलेंगे। अभी तो बोला सुदर्शन चक्र घुमाना है, अगर 84 के चक्र को जानना है तो क्या करना है? सुदर्शन चक्र घुमाना है, हमारी आत्मा को 84 के चक्र में देखना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पार्ट बजाए, इसी मंथन में लगे रहे। बजाए इस मंथन में लगे रहने के, एक जन्म के पेट पूर्ति के चक्कर में लगे रहते हैं। हाँ? अरे मन शीशा कैसे बनेगा? हाँ? मन निर्मल कैसे बने? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा क्या? ईश्वरीय सेवा में जितना तन अर्पण करेंगे, धन अर्पण करेंगे, मन की ताकत अर्पण करेंगे, सगे संबंधियों की ताकत अर्पण करेंगे, सब कुछ अर्पण करेंगे, तो मन क्या बनेगा? मन दर्पण बनेगा। जो अर्पण में सो दर्पण में, मन पावरफुल बनाना है तो क्या करना है? सब कुछ
तेरा,
सब कुछ तेरा, अपनी चिंता नहीं, तो मन जरूर पावरफुल बन जाएगा। मन को ही आत्मा कहा जाता है, मन बुद्धि ही तो आत्मा है।
आपको पहचानने का संस्कार तो सब में कैसे जागृत करना है, कैसे बनाना है?
बनी बनाई बन रही आओ कुछ बननी ना। 63 जन्म में जितना भगवान की तरफ दूसरों के चित्त को मोड़ने का प्रयास किया है और अपने चित्त को जितना भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास किया है, वही संस्कार यहां भी उदित होते रहते हैं।
शकुनी मानव ज्ञान योग के पंख से उड़ने वाला, शकुनी मानव ज्ञान योग के पंख से उड़ने वाला
चिड़िया,
उनके अंडर में रहने वाला वैष्णवी देव, उनके अंडर में रहने वाला और चक्रचाय में रहने वाला अंतला होता है, शकुंतला करता है कृष्ण। शकुनी मानव ज्ञान योग,
शकुनी माने पक्षी,
माना अष्टदेव के अंडर में रहता है।
शकुनी माने पक्षी, पक्षी माने जो ऊंची उड़ान भरते हैं, ज्ञान योग के पंखों से उड़ते हैं, ज्ञान योग के पंखों से जो उड़ते हैं उनके नीचे रहने वाले
किसको लागू
होते हैं? अरे शकुंतला की संतान कौन था? भरत चक्रवर्ती राजा था ना, उसके पिता का नाम क्या था? दुष्यंत। कौन है? शिव। तो शिवबाबा का प्रैक्टिकल रूप क्या है?
शंकर।
अरे शंकर, जो शंकर है वही शिवबाबा का प्रैक्टिकल रूप है। तो सबसे जास्ती ज्ञानियों के पंखों से उड़ने वाला कौन है? हैं? राम वाली आत्मा। उसके अंडर में सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? राम वाली आत्मा की ये श्रीमत पर सबसे जास्ती कौन चलता है, सबसे ज्यादा फॉलो कौन करने वाला है? छोटी मम्मी। तो शकुंतला हो गई।
भरत
माने भरण पोषण करने वाला, सारे विश्व का भरण पोषण करता है। शिव बाबा कौन सी आत्मा को कहेंगे? शिव को कहेंगे या शंकर को कहेंगे?
शिव को।
हैं?
शिव को।
शिव को कहेंगे। तो शिव के अंडर में चलने वाला राम वाली आत्मा है या लक्ष्मी वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा शिव के अंदर पूरा चलती है। हैं? विष पीने वाले को पूरा पवित्र कहेंगे, पूरा अंदर में चलने वाला कहेंगे? हाँ वैष्णवी देवी। मुख्य है ज्ञान का, जो मुख्य आर्डर है, मुख्य आज्ञा है, वो कौन सी है? पवित्र बनो। योगी योगी तो बना लेकिन पवित्र तो हुआ नहीं। पवित्र होने के लिए फिर किसका आश्रय लेना पड़ता है? लक्ष्मी का आश्रय लेना पड़ता है। तो ज्ञानियों के पंखों से उड़ने वाला हुआ शिव बाबा, और उसकी उसके अंडर में रहने वाली हुई लक्ष्मी, और उसका बच्चा कौन हुआ? भरत। कौन हुआ भरण पोषण करने वाला विश्व का? विश्व भरण पोषण कर जो हुई है। हाँ नारायण।
संस्कार का पूर्व जन्म का संस्कार भविष्य का संस्कार,
पूर्व जन्म का संस्कार भविष्य का संस्कार। पूर्व जन्म का संस्कार तो भविष्य का संस्कार तब बनेगा जब हम वर्तमान जन्म में कुछ कर्मों में ऐड करेंगे, तो भविष्य का बन जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार हमें वर्तमान जन्म मिला, अच्छे संस्कार हैं तो अच्छा जन्म मिला, बुरे संस्कार हैं तो खराब जन्म मिलता है। और फिर इस जन्म में हम अच्छे कर्म करें तो आगे का जन्म अच्छा हो जाएगा, अच्छे संस्कार बन जाएंगे। जैसे अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा जो श्रीमत मिल रही है और श्रीमत पर अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। और जान करके भी, बूझ करके भी, समझ करके भी और फॉलो नहीं करते हैं तो हठयोगी सन्यासी ढीठ हुए या सहजराजी योगी हुए? हठयोगी हुए। हठयोगी सन्यासी तो फिर स्वर्ग पाए नहीं सकते, दुखी होंगे, दुख के संस्कार हम ग्रहण करेंगे, दुखी दुनिया में जाके जन्म लेंगे। मन सोचता है, बुद्धि फैसला करती है। और फिर हम जो कर्म करते हैं उसका मन बुद्धि के ऊपर असर पड़ जाता है। हमारी आत्मा खुद ही रियलाइज करने लग पड़ती है कि हम इसका हम योग्य हैं या नहीं योग्य हैं। बुरे कर्म करने से मन मनोरूपी दर्पण कैसा हो जाता है, मैला हो जाता है, खाक चढ़ जाती है। ज्यो ज्यो अच्छे कर्म करते जाते हैं त्यो त्यो दर्पण साफ होता रहता है। तो मन बुद्धि के ऊपर जो असर पड़ता है अच्छे बुरे कर्मों का, वो ही संस्कार कहा जाता है। कोई ज्ञान लेने के बाद भी संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और ज्यादा बिगड़े बनते जा रहे हैं। कोई का ज्ञान लेने के बाद तुरंत परिवर्तन दिखाई देता है।
इस्लाम धर्म का बीज जो है उसको एक क्या कहते हैं, भरत बोल के बता बनाई। इस्लाम धर्म का बीज भरत, भरत पोषण करने वाला इस्लाम धर्म का बीज भरत है, बोलते बनाएंगे।
वो भरत नाम पड़ गया है संगम युगी एक्ट के अनुसार। शिव बाबा जब आता है, जिस मुकर्रर रथ में आता है, वो विश्व पिता है या नहीं है? उस विश्व पिता का जो भरण पोषण करता है फाउंडेशन की पीरियड में, वो ही भरत बन जाता है। इसलिए उसका नाम पड़ गया भरत। सीढ़ी के चित्र में भी भारत को भीख देते हुए कौन दिखाया गया है? कोई विदेशी दिखाया गया है ना? तो विदेशियों में पहला पहला विदेशी कौन? इस्लाम धर्म। इसलिए विश्व भरण पोषण वैसे भी देखा जाए हिस्ट्री में, तो दुनिया के ऊपर सबसे जास्ती राज्य कौन से धर्म ने किया? इस्लाम धर्म वालों ने किया। वो भरत का संस्कार उसकी सारी जनरेशन में समाया हुआ है। सारे विश्व के भरण पोषण करने वाले इस्लाम धर्म वाले बन गए। क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी 100-200 वर्ष के अंदर दुनिया में फैला है, पहले तो सारी दुनिया में इनका राज्य था, इस्लामियों का ही राज्य था।
इस्लाम और मुसलमान के बीच में
वो तो दुनिया में हर धर्म के दो छेड़े हो जाते हैं क्या? कोई भी धर्म है, किसी को भी उठा लो, देवी देवता सनातन धर्म को उठा लो, दो छेड़े हो गए, सूर्यवंश और चंद्रवंश। जब नई दुनिया शुरू हुई थी क्योंकि चंद्रवंश था क्या? नहीं, सूर्यवंश ही था। फिर दो छेड़े हो गए कि नहीं? इस्लाम वंश के भी दो छेड़े हो गए इसी तरह है? इस्लामी और मुसलमान, मुसलमान धर्म के भी दो छेड़े हो गए, शिया और सुन्नी। बौद्ध धर्म के भी दो छेड़े हो गए, हीनयान महायान। तो ऐसे ही ये तो द्वैतवाद होता ही चला जाता है दुनिया में, एक से दो हो जाते हैं। एक रहता है तो सतो प्रधान, क्या कोई भी धर्म हो जब तक उसमें एकता है तब तक सतो प्रधान, और जैसे ही द्वैत शुरू होता है वैसे ही तमो प्रधान होना शुरू हो जाता है। Yeah.